मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 27 जनवरी 2017 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की 22 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं सदाशिव वर्मा, आप नगर कोठरी मध्य प्रदेश से हैं, प्रेमी बांसवास सवाई माधोपुर राजस्थान से हैं, और शाश्वत अग्रवाल वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। तो सदाशिव, प्रेमी और शाश्वत, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, चूंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को कुछ सूचनाएं मुझे आप लोगों को देनी होती हैं, तो कुछ सूचनाएं हैं दोस्तों कि शनिवार और रविवार को आप जानते हैं कि डेली ऑडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं होता है, तो ऑडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन कल यानी कि सैटरडे को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी, और प्रेस क्लिपिंग्स के साथ ही साथ आपको कुछ एडिशनल चीजें भी मिलेंगी, और उस एडिशनल चीजों में आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के दो आर्टिकल मिलेंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश में। साथ ही आपको योजना के भी दो आर्टिकल्स मिलेंगे, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। दोस्तों, मैं यहां आपको बता दूं कि अक्सर ये होता है कि आप जब योजना हिंदी और इंग्लिश देखेंगे और इसी तरह से कुरुक्षेत्र हिंदी और इंग्लिश देखेंगे, तो बहुत से आर्टिकल ट्रांसलेटेड होते हैं, मतलब सेम होते हैं। हिंदी में भी वो आर्टिकल होगा और इंग्लिश में भी वही आर्टिकल होगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महीने में हम आपको चार आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं तो चार और आठ आर्टिकल हो जाते हैं हिंदी और इंग्लिश को मिला करके, तो आठ टॉपिक भी होते हैं, ऐसा नहीं है। जो आर्टिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, उसे मैं दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कर देता हूं, बशर्ते कि वो अवेलेबल हो। इसीलिए हो सकता है कि टॉपिक वाइज आप टोटल आठ आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको पांच ही टॉपिक मिले, छह टॉपिक मिले, चार ही मिले, आई डोंट नो, वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हर बार हर महीने वो वेरी करता रहता है। दूसरी बात मैं ये भी आपको बता दूं कि ये भी जरूरी नहीं होता है कि मैं जिस टॉपिक पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आर्टिकल मिल रहे हैं तो दोनों ही आर्टिकल एक ही साथ प्रोवाइड कर दूं, वो आगे पीछे भी होते हैं, और उसके पीछे बकायदे रीजन है। रीजन ये है कि अगर मुझे दूसरी लैंग्वेज में उससे भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल रहा है तो फिर मैं उसे पहले प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। लेकिन एक बात मैं आपको इंश्योर करना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि जो आपको आर्टिकल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, नो डाउट कि इंपॉर्टेंस के आधार पर तो हम सबको बराबर मार्क्स नहीं दे सकते कि सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से फालतू का आर्टिकल कोई नहीं होता कि केवल प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, कि कुछ देना है तो आपको जबरदस्ती दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है और उस पर भी जनरल स्टडीज, तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो काज की संभावना तो हमें लेकर चलनी चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उस आर्टिकल का मैं चयन करता हूं। तो मुझे लगा कि फ्रेंड्स, मुझे इसके बारे में आप लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही साथ एक वीकली क्वेश्चन भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाता है, ताकि आप 7 दिन तक उस पर अच्छे से तैयारी करें उस टॉपिक, और इसके बाद फिर उस पर आंसर लिखने की कोशिश करें। मैं यहां एक बात और आप लोगों से कहना चाहूंगा मित्रों, कि आप लोगों के ईमेल के जरिए मुझे लगातार ये कहा गया है कि जो वीकली क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करता हूं उसको कैसे लिखा जाए, कम से कम ये मैं आप लोगों को बताऊं। सच पूछे तो मैं चाहता भी हूं कि मैं ऐसा करूं, लेकिन सच पूछे तो चूंकि हमारा ये जो डेली ऑडियो लेक्चर है ये पूरी तरह से न्यूज बेस्ड है, मतलब करंट बेस्ड है कहना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी ही मुझे मौका मिल पाता है कि मैं उस इश्यू पर भी बात कर सकूं। अदरवाइज चीजें इतनी ज्यादा होती हैं कि अगर समय को दुगना भी कर दिया जाए तो मतलब अन्यथा नहीं होगा कि कोई जबरदस्ती की भर्ती की जा रही है। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 20 मिनट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर तो देखिए आप जितना भी आगे डिस्कस करना चाहें आप करते रहिए, उसी चीज को ज्यादा ज्यादा बड़े चौड़े तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए, जो मैं नहीं चाहता कि हम बेवजह फिर अपना समय उसमें लगाए भी। तो टाइम का एक स्ट्रक्चर होता है, एक मर्यादा होती है, और उसके तहत 20-22 मिनट में बात करता हूं और उसे मैं अपने लेवल पर सफिशियंट समझता हूं। तो इसलिए दोस्तों मैं वीकली क्वेश्चन पर आप लोगों से डिस्कस नहीं कर पाता हूं, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सूचना देना चाहूंगा, आप यूं कह लीजिए कि जब लगातार स्टूडेंट्स इस तरह की बातें जरूरत महसूस करने लगे, और मैं खुद भी महसूस करता हूं, तो दोस्तों मैंने इस पर फिर आर्टिकल लिखा था, और वो एक लंबा लेख लिखा मैंने उस पर कि स्टूडेंट कैसे अपने क्वेश्चन लिखे हुए आंसर को जांच सकते हैं, क्या टेक्निक अपनाएं कि वो अपने ही लिखे आंसर का मूल्यांकन कर सकें। और दोस्तों वह चैप्टर जो मेरा आप आईएएस कैसे बनेंगे का भाग दो जो किताब है जो अभी आई है, यानी जनवरी के बिगनिंग में आई है, उसमें वो बहुत डिटेल में वो चैप्टर है। और मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत से स्टूडेंट ने मेल के जरिए इस पार्ट टू किताब की बहुत तारीफ की है, और स्पेशली इस चैप्टर की उन्होंने कुछ ज्यादा ही तारीफ की है, और इस रूप में प्रशंसा की है कि इसको पढ़ने के बाद हमारी जो एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हम अपने प्रश्न को जांचे कैसे कि हमने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, वो समस्या सुलझ गई। तो दोस्तों अब चूंकि हम वीकली क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे ये भी सूचना आप लोगों को दे देनी चाहिए कि यदि आप भी इस तरह की कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो अगर यदि आप आईएएस कैसे बनेंगे पार्ट टू वाली किताब खरीद लें, या वो आर्टिकल आपको मिल जाए, तो उसको पढ़ने के बाद आपको हो सकता है कि कोई समाधान मिल सके। दोस्तों और अंतिम इसके बाद अंतिम सूचना है कि जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है वो जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं उनको भेजा जाएगा। तो दोस्तों इस सूचना के बाद अब हम आते हैं न्यूज एनालिसिस पर, और आज न्यूज एनालिसिस की एक अच्छी खबर यह है कि कल 26 जनवरी होने के नाते आज कोई भी अखबार कम से कम मेरे पास तो नहीं आया है, मतलब आज मैं अखबार रहित हूं, कैशलेस सोसाइटी की तरह ही आज मैं न्यूज पेपर लेस पर्सन हूं। तो इसलिए मित्रों अखबारों के माध्यम से बात करने के लिए कुछ नहीं है, और आपको न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स के सेक्शन में भी कुछ भी नहीं मिलेगा, और शायद आपको अच्छा ही लगेगा अगर आप ईमानदारी से अपने आप से प्रश्न पूछेंगे तो यही कहेगा कि यार थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है। और इस तरह की अगर राहत महसूस हो तो आप लोग इसे गलत भी मत समझिए कि कुछ गलत हो रहा है, एक स्वाभाविक है, मनुष्य व्यक्ति लगातार एक ही तरह की चीज को करते करते थोड़ा सा मोनोटोनस उसमें आ जाता है, निरस्ता में आ जाता है, और इस तरह के गैप बेहतर ही होते हैं। और उसको आज हम लोगों ने, मैंने और मेरी पत्नी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल ने महसूस भी किया कि सुबह चाय के साथ हम लोगों के अखबारों के अध्ययन पढ़ना शुरू होता था। मैं तो अध्ययन ही करता हूं क्योंकि मुझे तो अध्ययन करना पड़ता है तभी मैं डेली ऑडियो आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। तो आज हम खाली थे बिल्कुल, चाय की चुस्कियां ले रहे थे, बात कर रहे थे, और इसके बाद भी फिर बाहर हम लोगों ने बड़े आराम से आधे घंटे तक बात की क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ था नहीं। तो आज का दिन थोड़ा सा अनोखा किस्म का दिन लगा, और ऐसा साल में 2-3 बार तो हो ही जाता है, 15 अगस्त को, 16 अगस्त को हो जाता है, और 26 जनवरी को हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम उस तरह की भी आजादी का एहसास कर लेते हैं। खैर मित्रों अब मैं आता हूं न्यूज एनालिसिस के तहत कल के AIR न्यूज पर। फ्रेंड्स कल के AIR न्यूज के बारे में मैं एक अलग तरीके से आपको आपसे बातें करने जा रहा हूं, और इसके माध्यम से मैं आज सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में आपसे कुछ बातें करूंगा। फ्रेंड्स जो सिविल सर्विस की तैयारी है, देखिए हिंदुस्तान की बहुत कठिन परीक्षाओं में से एक है, यहां तक कि दुनिया की कठिन परीक्षाओं में से भी इसको एक माना जाता है, इसके चैलेंजेस है, इस एग्जामिनेशन की तैयारी के अपने चैलेंजेस तो हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि चैलेंज चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि आपके पास तैयारी करने का तरीका है तो वो चैलेंजेस छोटे हो जाते हैं। जैसे चलना तो हम भी जानते हैं, छोटे मोटी पहाड़ियों पर तो हम लोग भी चढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आपको एवरेस्ट पर चढ़ना है तो उसके लिए फिर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। मैं ट्रेनिंग का मतलब कोचिंग नहीं कह रहा हूं, आप उसे बिल्कुल ये मत लीजिएगा। बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें तैयारी कैसे करनी चाहिए, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि उन्हें तैयारी कैसे करनी चाहिए। हो सकता है कि नई जानने वाले भी पहुंच जाते हों, तैयारी कर करके अपने अनुभव से जान जाते हो, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह जरूर है कि जब हम एक सिस्टम को जान जाते हैं तो जो हमारा रास्ता होता है वो आसान हो जाता है। आसान होने के साथ साथ वो थोड़ा सा इंश्योर भी हो जाता है, हमको जरा ज्यादा भरोसा हो जाता है कि नहीं हम अपने लक्ष्य को पालेंगे। इसलिए मित्रों, मैं कभी कभी बीच बीच में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए इस पर भी बात करने की कोशिश करता हूं एक गाइडेंस के फॉर्म में, कि केवल कंटेंट से बात नहीं बनेगी, है ना, कि मैं एनालिसिस आपको बता दूं और आप में एक एक्सप्लेनेटरी पावर भी डेवलप हो जाए, इसी से बात नहीं बनेगी। क्योंकि पढ़ने को इतना कुछ है कि आपको एक आप में एक क्षमता होनी चाहिए कि इसमें से किस किस को पढ़ना है, और साथ ही साथ अगर इसको पढ़ना भी है तो किस तरीके से पढ़ना है, इसकी दिशा क्या होगी, किस डेप्थ तक पढ़ना है, किस एंगल से पढ़ना है, ये सारी चीजें भी आपको जाननी चाहिए। और ये अगर मैं अलग अलग चीजें ये बता रहा हूं तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये तो केवल एक एहसास की बात है कि हमें एक लगने लगता है कि हाँ ये चीज इस तरीके से पढ़ी जानी चाहिए, बात खत्म हो गई, उतना ही सफिशियंट होता है। ये तो एक सेंस प्रिवेल कर जाता है दिमाग में, ये किस तरह की धारणा बन जाती है। अब आप देखिए कि कल की न्यूज अगर आपने सुनी है तो उसमें आपने उस हेडलाइन में भी वो बात थी, और बाद में फिर एक्सप्लेनेशन में तो था ही कि जो हमारा जो परेड, जो 26 जनवरी की जो परेड निकली, उस परेड में सरकार की कुछ योजनाओं की झांकियां थी, उसको स्पेशली हाईलाइट किया गया, राइट। जहां तक मुझे कुछ नाम याद आ रहे हैं जो उस उन्होंने उच्चारण किए, वो उसमें था हरित भारत, फिर था कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो सरकार की बहुत बड़ी योजना है और जिसको काफी तारीफ मिल रही, काफी प्रशंसा मिल रही है। आप देख रहे हैं कि एड भी टीवी पर, न्यूज चैनल्स पर कितने आ रहे हैं, और अब तो कुछ फिल्म एक्ट्रेसेस भी इसके प्रचार प्रसार मतलब उस एड में शामिल हो गई है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम था, स्वच्छ भारत का नाम था, ये सब सरकार की योजनाएं हैं, इनके नाम उस न्यूज में थे। तो दोस्तों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के रूप में आपको तुरंत ये बात समझ जानी चाहिए कि नहीं, ये जो सरकारी योजनाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, जिसे हम फ्लैगशिप प्रोग्राम्स कहते हैं, मतलब प्राथमिकता वाले प्रोग्राम्स है। इस पर सरकार बहुत ज्यादा जोर दे रही है, 26 जनवरी के परेड में शामिल किया गया, हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारी ये योजनाएं हैं, हमारी प्राथमिकता में है। और अगर सरकार की ये प्राथमिकता में है तो आप मान करके चलिए कि आपके सिविल सर्विस की भी प्राथमिकता में है, यानी कि ये जो इस तरह की योजनाएं हैं, इस तरह की योजनाओं की तैयारी आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, बस सीधी सी बात है। अब मित्रों, यहां से आपने पकड़ लिया कि आपको क्या पढ़ना है, अब आप क्या करेंगे, अब आप सिलेबस में जाइए, आप देखिए कि ये जो योजनाएं हैं, ये जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं, ये किससे संबंधित है। तो आपको लगेगा कि कुछ तो सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं हैं, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सामाजिक क्षेत्र की योजना है। तो सामाजिक क्षेत्र की योजना आपके किस पेपर में है, जनरल स्टडीज के, तो आपको लगेगा वो सेकेंड पेपर में है और फर्स्ट पेपर में भी है। वीमेन एम्पावरमेंट फर्स्ट पेपर में है और वीकर सेक्शन का नाम सेकेंड पेपर में है। तो यानी कि यह योजना एक साथ आपको दो एंगल से पढ़नी होगी, एक सोशल एंगल जो फर्स्ट पेपर में है, और सेकेंड पेपर में इसकी एक आप कह लीजिए कि कानूनी जो संवैधानिक एंगल है कौन, उसके तहत पढ़ना होगा। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ चूंकि भेदभाव की बात जुड़ी हुई, कन्या भ्रूण हत्या भी जुड़ी हुई है, तो ये फोर्थ पेपर में जाकर के एक एथिकल एंगल भी हो सकता है, क्योंकि वहां भी ये चीज है। तो आप जब सिलेबस के बारे में जब सोचेंगे तब आपको एंगल दिखाई देगा। और ज्यादातर जो योजनाएं होती हैं सरकार की, वो अर्थव्यवस्था से संबंधित होती हैं, क्योंकि वो केंद्रीय योजनाएं हैं ज्यादातर। क्योंकि भारत की अभी जो समस्या है वो सबसे बड़ी यही समस्या, समावेशी की समस्या है, कि जो हमारे यहाँ के जो एक बहुत बड़ा जो आबादी का हिस्सा है वो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाया है, तो कैसे हम उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से एम्पावर्ड बनाएं। तो बहुत सी जो योजनाएं हैं वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो अब आप थर्ड पेपर उठा करके देखिए, जनरल स्टडीज का अपना जो इकोनॉमिक्स से डेवलप रिलेटेड है, फिर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जो थर्ड पेपर है वो इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं है। वो क्या नाम उसमें दिया हुआ, आप पढ़ करके देखिए पेपर के टाइटल में, तो उसमें दिया हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नॉट इकोनॉमिक्स, दिस इज एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब आपको नहीं लग रहा है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फर्क है, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स को पढ़े बिना आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं समझ सकेंगे। प्री में तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ये बात अलग है कि वो बहुत ही अप्लाइड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही व्यावहारिक किस्म के होते हैं, लेकिन बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना बेसिक्स को समझे आप उन प्रश्नों को सही सही हल कर पाएंगे, मुझे इस बारे में डाउट है। तो आपको वहां पढ़ना पड़ेगा, और थर्ड पेपर के लिए फिर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जाना पड़ेगा। तो जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जाएंगे तो पता लगेगा कि ये जो कौशल विकास है ये कुछ उसी तरह का एक योजना है, स्किल डेवलपमेंट, कि कैसे हम अपने लोगों का स्किल डेवलप करके उन्हें आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम बनाएं। तो मित्रों, जब इस तरीके से आप करेंगे तब फिर आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे इसको पढ़ना है, राइट। अब इसको अब आपको इंपॉर्टेंस देनी है, प्राथमिकताएं निर्धारित करनी है, योजनाओं का कितना कंट्रीब्यूशन है आपके क्वेश्चन पेपर्स में। तो मित्रों, जब आप देखेंगे अनसॉल्व्ड पेपर तब आपको पता लगेगा कि नहीं, ये योजनाएं भले ही सिंपल सी दिखाई दे रही हैं और पढ़ने में कोई बहुत मुश्किल नहीं है, समझने में भी मुश्किल नहीं है, और सच पूछे तो एनालिसिस करने में भी मुश्किल नहीं होता यदि आप कुरुक्षेत्र और योजना की पत्रिका से जुड़े हुए हैं तो, कि बहुत ज्यादा वेटेज है। चलिए, आप मेरी बात मत मानिए, आप टेस्ट करके देख लीजिए। आप उठाइए 2016 का दिसंबर में जो मेंस का एग्जाम हुआ है, और उसके आप थर्ड पेपर को उठाइए, जनरल स्टडीज का थर्ड पेपर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि 20 प्रश्नों में से 6 प्रश्न, 6 out of 20 सिर्फ योजनाओं से संबंधित हैं, सिर्फ स्कीम्स से संबंधित हैं, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं 20 में से 6। और केवल ये मत समझिए कि ये तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से यही पूछा गया है, और भी हैं। अगर एक पूरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो बात करेंगे तो फिर हम 6 × 12 पे पहुंच जाएंगे। ये तो मैं 6 वो बता रहा हूं जो गवर्नमेंट की सीधे सीधे योजनाओं से जुड़े हुए सवाल हैं, चाहे वो फिर स्मार्ट सिटी पर पूछा गया प्रश्न हो, चाहे वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर पूछा, ग्रोथ पर पूछा गया प्रश्न हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की जन धन योजना पर पूछा गया प्रश्न हो, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर पूछा गया हो, ये सब योजनाओं पर ही तो पूछे गए हैं। आप देखिए कि फिर क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो जब आप इस तरीके से विचार करते हैं तो आपको तैयारी करने का एक बना बनाया एक बहुत स्पष्ट रास्ता दिखाई देता है, राजपथ दिखाई देता है। और मित्रों, एक बार जब राजपथ दिखाई दे जाता है तो जैसा कि मैंने कहा कि फिर उस पर चलना आसान हो जाता है, बस पुल मिला करिए। जंगल को भी हम पार कर सकते हैं भटकते हुए, टाइम अधिक लगेगा और परेशानी भी अधिक होगी, लेकिन यदि हमारे पास जंगल में से ही एक पगडंडी निकल गई है कहीं और हमें मालूम है कि ये उधर निकाल देगी तो, और हम पगडंडी पर चलना शुरू कर देते हैं तो बिना दोहराव के, बिना भटके हुए हम आराम से उस जंगल को पार कर लेते हैं। बस मैं कुल मिलाकर के आपसे यही बात कहना चाह रहा था। तो मित्रों, ये जो राजमार्ग है इसकी जो स्ट्रीट लाइट है वो कौन कौन सी है? नो डाउट रेडियो न्यूज, दूरदर्शन न्यूज, न्यूज़पेपर्स, और इसके बाद फिर हमारे अनसॉल्व पेपर्स, और इसके बाद नो डाउट सिलेबस। ये तीन चीजें हमारे लिए स्ट्रीट लाइट का काम करती हैं, जो हमें रोशनी प्रदान करती हैं, ताकि अगर हम राजमार्ग को जानते भी हैं तो रास्ता तो दिखाई दे। तो मित्रों, आज के न्यूज एनालिसिस में मैंने ये थोड़ी सी बातें की हैं जिसे मैं सच पूछिए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। तो अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है, और सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: निकिता तोमर इंदौर से, शशि शेखर, सागर मलिक शामली उत्तर प्रदेश से, जिग्नेश सूरत गुजरात से, शाश्वत सिंह इलाहाबाद से, अभिषेक त्रिपाठी न्यू दिल्ली से, नील कमल साहू राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, सिमरनजीत सिंह लुधियाना से, हम दर्द बोपाराय, रुपेश शर्मा बस्सी जयपुर राजस्थान से, और अखिलेश कुमार बेतिया बिहार से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अब इसी के साथ ही अब मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को शुभकामनाओं के साथ समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं, और ये शुभकामनाएं इस बात की हैं कि आने वाले 2 दिन आपके लिए बहुत सुखद और बहुत ऊर्जावान और रचनात्मक हो। तो मित्रों, अब इजाजत चाहता हूं, नमस्कार।